नमस्कार, बंसीलाल बोल रहा हूँ। ये तीसरा भाग है श्री मित्तल जी की जानकारी का। निदेशक मित्तल साहब के समय में कई शोध पत्र तैयार हुए और उन्हें जोनल ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड एंड ब्लाइंडनेस GVIE जैसे विख्यात अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। इसी दौरान भारत के आवासीय विद्यालयों के एक निर्देशिका बनाई गई, प्रकाशित की गई। अपने तरह का यह एक सर्वाधिक विश्वसनीय दस्तावेज है। दृष्टिबाधितों के शिक्षकों के लिए पुस्तक की योजना थी, इसके लिए विश्व आवश्यक सामग्री तैयार की जा चुकी थी। हाँ, प्रकाशन उनके जाने के बाद हो पाया। मार्गदर्शिका के लिए मित्तल साहब ने असिस्ट नाम की अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका छपवाना आरंभ किया। इसी उद्देश्य से वे कार्यकारिणी की बैठकों के निर्णयों की प्रति सभी अधिकारियों को दिया करते थे। इसके कुछ लोगों ने दुरुपयोग भी किए। उपलब्धियां और सफलताओं के साथ साथ मैं उस कालखंड के परिवेश को भी महत्वपूर्ण मानता हूं। यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसमें सजीवता थी और स्फूर्ति भी। सामान्य तनाव थे पर लोग त्रस्त नहीं थे। मित्तल साहब स्वाभिमानी और निडर व्यक्ति थे। उन्हीं की वजह से हम भी निडर वानवी का अनुभव करते हैं। सब कुछ इतना बढ़िया था तब हम सलाह करेंगे कि फिर उन्हें सरकार का गौभाजन क्यों बनना पड़ा। कहना जरूरी है कि बहुत कुछ व्यक्तिगत वैमनस्य का परिणाम था। मित्तल साहब का योगदान यह ऐतिहासिक रहा, लेकिन इतिहास के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए मुझे कहना होगा कि दिल्ली से आते हुए स्वयं मित्तल साहब को भव्य विदाई दी गयी। यह भी उतना ही सच है कि एक दूसरा समूह इनको बड़ा कष्टदायक मानता था, जो उनकी सफलता के साथ बढ़ता गया। उस दल की जड़ें और समर्थक देहरादून में ही थे। अतः झूठी खबरों की फैक्ट्री तेजी से काम करने लगी। योजना के अनुसार तथा रिक्तियों के होने पर भी उन्हें भरने के लिए छोटी बड़ी कई नियुक्तियां की गई। उन्हें संस्थान के सर्वाधिक हित को ध्यान में रखते हुए अपना दायित्व निभाया।
इस ऑडियो को IVR पर पसंद कर इसे आगे भेजना चाहते हैं तो 5 दबाएं। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS किया जाएगा और अगर आप इनेबल वानी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पसंद किए गए ऑडियो को डाउनलोड करें और फॉरवर्ड करें।